ہیلو کائناتیز، ہماری زمین ایک سیارہ ہے جو اپنے ستارے سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اور بھی سیارے ہمارے نظام شمسی کا حصہ ہیں جو ہمارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں. اور ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے، ہماری کہکشاں ملکی وے کا. اب اسٹرانومرز نے کئی اور ستارے دریافت کیے ہیں ہماری ملکی وے میں، جن کے گرد سیارے بھی موجود ہیں، مگر ابھی یہ جو جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ ہے اس نے کافی ایک سرپرائزنگ ایک دریافت کی ہے، جس میں انہوں نے بہت سارے فری فلوٹنگ سیارے، یعنی کہ سیارے جو کسی ستارے کے گرد نہیں گھوم رہے، وہ دریافت کیے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت ایک نیبولا ہے، اورائن نیبولا، وہ اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہماری کہکشاں میں ستاروں کے درمیان بھی شاید بہت سارے سیارے موجود ہوں. یہ ہے کائناتی گپ شپ اور میں ہوں سلمان حمید. اورائن نیبولا رات کا ایک بہت ہی خوبصورت ایک آبجیکٹ ہے. یہ آپ ایک دوربین سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹی ٹیلیسکوپ سے بھی آپ کو سردیوں کے زمانے میں آپ کو ایک فزی سا آپ کو بلوب نظر آئے گا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس کو پہلے ٹیلیسکوپ سے نہیں دیکھا، تو اب جب سردیاں آ رہی ہیں تو آپ کسی ایمیچور اسٹرانومی گروپ، اگر آپ کے شہر میں ہیں، آپ ان کو کانٹیکٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ ٹیلیسکوپ سے اورائن نیبولا کو دیکھیں. یہ دراصل ایک گیس کا نیبولا ہے جس کے اندر نئے ستارے بن رہے ہیں. یہ ہم سے تقریباً 1300 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے اور یہ کافی قریب ہے. اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ وہ ہمیں اچھا نظر آتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ ستارے اس قسم کے گیس کلاؤڈز میں کیسے بنتے ہیں. ہمارا اپنا سورج غالباً اسی قسم کے نیبولا میں آج سے 4.5 ارب سال پہلے بنا تھا. لیکن اس وقت جب آپ اورائن نیبولا کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو کچھ ہزار ستارے جو ہیں، جو حال ہی میں بنے ہیں، وہ آپ کو نظر آتے ہیں. اب یہ جو ٹوٹل اس کا جو اورائن نیبولا کا ایک لحاظ سے حصہ ہے، وہ تو 2/14 کے چاندوں سے بھی بڑا ہے. تقریباً 1 ڈگری وہ اوپر کور کرتا ہے. لیکن ہمیں جو حصہ جو چھوٹی ٹیلیسکوپ سے نظر آتا ہے، وہ خالی اس کے ایک کونے کا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ کچھ بڑے نئے بڑے ستارے بنے، اور ان کی ریڈیشن کی وجہ سے، ان کی گرمی کی وجہ سے، ان کی روشنی کی وجہ سے، انہوں نے اس کلاؤڈ میں، اس کو بڑے کلاؤڈ کو مولیکولر کلاؤڈ کہتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک لحاظ سے سوراخ کر دیا ہے، ایک لحاظ سے اس میں انہوں نے کیویٹی بنا دی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں زمین کے اوپر ایک ویو ملتا ہے کہ ہم اس نیبولا کے اندر دیکھ سکیں. بلکہ حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ یہ جو ایک بہت بڑا اسٹرانومر تھا ٹالمی، یہ 1st century AD میں، اور السوفی، جن کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دا بک آف فکسڈ اسٹارز، جو 8ویں یا 9ویں صدی میں تھی، ان دونوں نے بہت احتیاط سے ستاروں کی آبزرویشن کی، لیکن انہوں نے اورائن نیبولا کو نوٹ نہیں کیا. تو خیال یہ ہے کہ غالباً یہ جو کیویٹی بنی جس کی وجہ سے اب ہمیں اورائن نیبولا کا نظر آتا ہے، وہ پچھلے 1000 سال میں ہوئی ہوگی. تو یہ ایک فیسینیٹنگ چیز ہے. نارملی ہم اسٹرانومی میں ہم اربوں سالوں کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا پرومیننٹ آبجیکٹ، اتنا اہم آبجیکٹ جو ہے، وہ غالباً پچھلے 500 یا 1000 سال میں وہ تبدیل ہوا اور اب ہمیں نظر آتا ہے. چلیں، میں نے اتنی تعریف کر دی اورائن نیبولا کی، تو میں یہ بھی کہتا چلوں کہ میرا خیال ہے کہ میری ایک سب سے پسندیدہ کائناتی گپ شپ جو ہے، وہ بھی اسی سلسلے میں ہے، جس کو آپ چیک آؤٹ کریں. وہ ہے اے ڈائیو انٹو دی اورائن نیبولا. اور اس کائناتی گپ شپ میں हबल स्पेस टेलीस्कोप के इमेजेस को एक्सप्लोर किया था और खासतौर से एक उसमें साइंटिफिक विजुअलाइजेशन थी एक्चुअल डेटा के हिसाब से कि अगर आप विजिबल लाइट में आप ओरायन नेब्यूला की ये जो कैविटी है आप उसके अंदर हो तो आपको कैसा लगेगा और वहां पर किस तरीके से नए सितारे बन रहे हैं। अब ज्यादातर वहां के सितारे जो हैं वो बहुत नौ उम्र हैं, कुछ तो बल्कि कुछ लाख साल पुराने हैं और कुछ सितारे अभी भी बनते चले जा रहे हैं। और याद रखें जो मैंने पहले कहा कि हमारे लिए ओरायन नेब्यूला जो है वो एक तरीके से हमें इंफॉर्मेशन देता है कि गालिबन हमारा अपना सूरज वो इसी किस्म के नेब्यूला में बना था, आज उसकी गैसेस हमारे आसपास नहीं, आज उसके जो सात सितारे बने थे वो पता नहीं कहां हैं, वो घूम फिर गए हमारी कहकशां में। लेकिन ये एक अच्छी मिसाल है कि अगर आपने हमारे अपने सूरज हमारे अपने निजाम शमसी के बारे में सीखना है तो ओरायन नेब्यूला जो है वो एक अच्छी जगह है। अब एस्ट्रोनॉमर्स को काफी हद तक पता है कि सितारे और सैयारे किस तरह से बनते हैं, खासतौर से सितारों के सिलसिले में हमें पता है कि किस तरह से बड़े सितारे बनते हैं और किस तरीके से छोटे सितारे बनते हैं और कितनी मकदार में रिलेटिव एक दूसरे के हिसाब से। हमें यह भी पता है कि ये जो सितारे की डेफिनेशन है जिसको एस्ट्रोनॉमर्स देते हैं वो ये कहते हैं कि उसके जो न्यूक्लियर रीजन है या उसका जो कोर है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो फ्यूज करती है हीलियम में। ये एक लिहाज से हमारे लिए सितारे की डेफिनेशन है। ये कुछ और फेल्ड सितारे भी हैं जिनको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं ब्राउन ड्वार्फ्स। वो जुपिटर से तकरीबन 10-15 गुना ज्यादा बड़े होते हैं मादे में। उनके अंदर जो है वो फ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन की नहीं हो सकती क्योंकि उनका ज्यादा मादा नहीं, लेकिन उसमें ड्यूटेरियम की फ्यूजन होती है। तो हमें यह तो पता था कि सितारे जो हैं वो काफी छोटे साइज के होते चले जाते हैं और ये जो फेल्ड सितारे हैं ब्राउन ड्वार्फ्स वो जो जुपिटर के मास से तकरीबन 10-15 गुना ज्यादा बड़े हैं वो भी पाए जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो सैयारे हैं वो एस्ट्रोनॉमर्स को ये पता था कि वो सितारों के गिर्द ही बनते हैं। उसकी और वजूहात हैं कि किस तरीके से प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क होती है और किस तरीके से उस डिस्क से सैयारे जुपिटर सैटर्न जैसे या छोटे सैयारे जिस तरह जमीन या वीनस या मार्स हैं वो किस तरीके से बनती हैं। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो इंफ्रारेड लाइट में काम करती है उसने ओरायन नेब्यूला की बहुत जबरदस्त किस्म की तस्वीरें ली। ये तकरीबन 3000 इमेजेस हैं जिसका उन्होंने एक मोज़ेक बनाया एस्ट्रोनॉमर्स ने और उनको उसमें एक हैरतअंगेज चीज नजर आई। उन्होंने ये देखा कि उसके अंदर तकरीबन 540 ये सैयारे दरियाफ्त हुए जो किसी सितारे के गिर्द नहीं थे, यानी कि ये फ्री फ्लोटिंग सैयारे थे। और ना सिर्फ ये बल्कि इसमें से 9% या तकरीबन 42 पेयर्स हैं, यानी कि 42 ऐसे सैयारे हैं जो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं। इनको एस्ट्रोनॉमर्स ने नाम दिया जंबोस, यानी कि जुपिटर मास बाइनरी ऑब्जेक्ट। ये भी हम जंबोस के सिलसिले में तो जरा और बात करेंगे, लेकिन ये सैयारे जो हैं वो हबल स्पेस टेलीस्कोप ने क्यों नहीं दरियाफ्त किए? इसकी वजह यह है, जैसा मैंने अभी पहले कहा, कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड में काम करती है और इंफ्रारेड की एक बात यह है कि वो आराम से एब्जॉर्ब नहीं होती। मतलब यह है कि अगर कोई ये जो नेब्यूला और गैस और डस्ट के क्लाउड के बीच में से अगर कुछ रोशनी आ रही है, इंफ्रारेड रोशनी जो है वो ज्यादा आराम से एस्केप हो जाती है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप गैस और डस्ट का एक लिहाज से थ्रू वो देख सकती है। लेकिन इसके अलावा एक दो और चीजें हैं। ये जो सैयारे हैं वो खुद अपनी रोशनी वो इंफ्रारेड में देते हैं, यानी कि ये रिलेटिवली नौ उम्र सैयारे हैं तो उनका जो अपना टेम्परेचर है वो तकरीबन 1000 degrees के करीब है और ये जो 1000 degrees है वो इंफ्रारेड रोशनी देती है। नॉर्मली जब आप सैयारों को हम डिटेक्ट करने की बात करते हैं या हमारे अपने निजामे शमसी के देखने की बात करते हैं तो वो अपने सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ये तो बगैर अपने सयाद सितारों के हैं, ये तो बिना सितारे सयारे हैं, तो वो रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे बल्कि उनकी जो अपनी गर्मी है ये उसको जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्ट कर रही है। और जो तीसरी वजह है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनको डिटेक्ट करने में कामयाब हुई, उसकी वजह यह है कि ये इसकी बहुत ज़्यादा रेजोल्यूशन है, मतलब ये है कि बहुत छोटी चीज़ों को वो डिटेक्ट कर सकती है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की भी यही एक बहुत बड़ी खूबी थी। तो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स मौजूद रही हैं लेकिन उनकी रेजोल्यूशन या उनकी जो बारीकी के देखने में उनका इतना काम नहीं था। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड में देख रही है ऐसे सैयारों को जो नौ उम्र हैं, जो इंफ्रारेड रोशनी देते हैं और इतनी रेजोल्यूशन में कि वो इंडिविजुअल इंफरादी ये जो सैयारे हैं उनको वो डिटेक्ट कर सके। अब जरा हम आते हैं एक बहुत बड़े पजल की तरफ कि ये जो फ्री फ्लोटिंग सैयारे दरियाफ्त हुए वो बने कैसे। अब बहुत सारे सैयारों को तो आप ये कह सकते हैं कि गालिबन वो उसी तरह से बने जिस तरह से हमारे अपने निज़ाम शमसी के सैयारे बने हैं, लेकिन वो किसी वजह से, और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, किसी वजह से वो अपने निज़ाम शमसी से इजेक्ट हो गए, यानी कि कोई ग्रेविटेशनल इनकाउंटर हुआ। इनफैक्ट एस्ट्रोनॉमर्स का ज़्यादातर ख्याल इस किस्म के फ्री फ्लोटिंग प्लैनेट्स के बारे में यही है कि वो इजेक्ट हो गए होंगे लेकिन बने एक निज़ाम शमसी के अंदर ही हों। एस्ट्रोनॉमर्स ने इससे पहले भी कुछ चंद फ्री फ्लोटिंग सैयारे जो हैं वो दरियाफ्त किए थे और यही प्रिडिक्शन थी कि वो किसी निज़ाम शमसी से इजेक्ट हो गए। लेकिन ये जो जम्बोज हैं, जो बाइनरी प्लैनेट्स हैं, यानी कि दो जुपिटर के मास जितने प्लैनेट्स एक दूसरे के गिर्द घूम रहे हैं, इनको किस तरीके से एक्सप्लेन करें। अब कुछ तो आप ये सोच सकते हैं कि क्या वो वाकई बाइनरी सैयारे हैं या हमें एक दूसरे के करीब वो खाली नजर आ रहे हैं। तो एस्ट्रोनॉमर्स का ख्याल ये है कि क्योंकि ये 9% सैयारे जो दरियाफ्त हुए हैं फ्री फ्लोटिंग वो पेयर्स में हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि वो एक्चुअल में एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं। तो फिर सवाल ये होता है कि वो कैसे बने। अगर वो इजेक्ट हुए हों किसी निज़ाम शमसी से तो वो एक दूसरे के ऑर्बिट में कैसे आ गए। तो ये बहुत बड़ा पजल है। इसका जवाब क्या है पता नहीं। ये अभी दरियाफ्त हुए हैं और अब एस्ट्रोनॉमर्स इसको तलाश कर रहे हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, वो कैसे फॉर्म में हो। लेकिन एक बड़ा ही जबरदस्त किस्म का एक सोल्यूशन है, और सोल्यूशन इस चीज के ऊपर है कि शायद ये ऐसे सैयारे हैं जिन्होंने सितारा बनना था लेकिन उनके आसपास की जो नेबुला की गैसेस हैं वो इवेपोरेट हो गई और वो छोटे से सैयारे रह गए। कैसे? वो याद है आपसे बात हुई थी शुरू में कि ये जो बड़े सितारे बनते हैं जो ओरायन नेबुला में भी हैं, उनकी जो रेडिएशन है, उनकी जो रोशनी है, उनकी जो गर्मी है, वो एक लिहाज से उस गैसेस को इवेपोरेट करती है। इसी तरह से ये ओरायन नेबुला की कैविटी बनी। अब आप सोच सकते हैं कि इस किस्म की गैसेस जो है, इस किस्म की रेडिएशन जो है, वो जब अगर वो उस गैसेस को इवेपोरेट करे जो किसी सितारे के गिर्द हैं तो वो उस सितारे को बनने से रोक सकती हैं। तो एक ख्याल ये है कि ये जो जम्बोज हैं ये वो बाइनरी सितारे थे, और आधे से ज्यादा सितारे जो हमारी कायनात में हैं वो बाइनरी हैं, यानी कि दो सितारे एक वक्त में बन रहे हैं या तीन या चार। तो ख्याल ये है कि ये जो जम्बोज हैं वो दो सितारे थे जो बन रहे थे, वो प्रोटोस्टार की फेज के ऊपर थे और अभी उनको और गैस चाहिए थी अपना मादा और जमा करने के लिए। लेकिन ये जो दूसरे बड़े सितारे हैं उनकी रेडिएशन, उनकी रोशनी की वजह से उनके आसपास की गैसेस जो हैं वो इवेपोरेट हो गई और वो छोटे से जुपिटर के साइज के मादे रह गए, यानी कि उनको एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो सैयारे कहते हैं। तो यानी कि इनके बनने का मैकेनिज्म, ये जो जम्बोज हैं, ये जो बाइनरी हैं जो जुपिटर के मास जितने, बिल्कुल फर्क है हमारे अपने जुपिटर और सैटर्न जैसे सैयारों का हमारे अपने निजामे शमसी के बनने का मैकेनिज्म। तो ये एक थ्योरी है, पता नहीं कि ये सही है या नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक फैसिनेटिंग आइडिया है और अब एस्ट्रोनॉमर्स उसको और स्टडी करेंगे कि क्या हम इस किस्म के जंबोस को बनते हुए देख सकें। जाने से पहले जरा एक बोनस फीचर की बात, अगर आप दोबारा से इस ओरायन नेब्यूला की तस्वीर देखें जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ली, इसमें आपको जो सबसे जो प्रोमिनेंट चीज नजर आ रही है वो ये आपको स्ट्रीमर्स नजर आ रहे हैं, ये बाओशॉक किस्म की चीजें नजर आ रही हैं। ये इसके अंदर ये शॉक वेव्स हैं और इसकी टिप्स के ऊपर आपको उसके अंदर नए सितारे भी बनते हुए नजर आ रहे हैं जिनको हम प्रोटोस्टार कहते हैं। लेकिन ये जो बाओशॉक्स हैं, ये जो शॉक वेव्स हैं, वो कुछ 100 किलोमीटर फी सेकंड के हिसाब से दूसरी डायरेक्शन में चली जा रही हैं। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रेस किया कि ये शॉक्स जो हैं वो कब चले थे, तो उन्होंने एस्टिमेट ये लगाया है कि 3 सितारे बड़े साइज के, बड़े मादे के, वो टकराए थे एक दूसरे से, उनका मर्जर हुआ था और उस धमाके की वजह से ये शॉक वेव्स चली और ये शॉक वेव्स अब आपको इस नेब्यूला में नजर आ रही हैं। और इन शॉक वेव्स के अंदर, क्योंकि गैस कंप्रेस होती है, वहां पर और नए सितारे बन रहे हैं। लेकिन उनका एस्टिमेट यह है कि ये जो 3 सितारों का मर्जर हुआ था वो आज से तकरीबन 500 साल पहले हुआ था। तो आपको याद है वो जो बात हुई थी कि क्या ओरायन में कैविटी बनी, हो सकता है शायद ये जो धमाका था, ये 3 सितारों का मर्जर था, शायद उसने भी इस चीज को कंट्रीब्यूट किया हो ओरायन नेब्यूला की कैविटी बनने में, जिसकी वजह से आज हमें ओरायन नेब्यूला की खूबसूरती नजर आती है रात के आसमान में। ये तमाम चीजें जो हैं वो बहुत ही कूल हैं। ये जो इमेज है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का वो भी जबरदस्त है। अगली दफा जब आप ओरायन नेब्यूला को देखें, छोटी टेलीस्कोप से भी या बड़ी टेलीस्कोप से, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर ना सिर्फ नए सितारे बन रहे हैं जिनके गिर्द सैयारे हैं, बल्कि बहुत सारे फ्री फ्लोटिंग सैयारे भी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन इसका एक और एक दिलचस्प कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि अगर इस किस्म के फ्री फ्लोटिंग सैयारे बेतहाशा मौजूद हैं इस ओरायन नेब्यूला में, इसका मतलब ये है कि ये हमारी कहकशा में, मिल्की वे में, वो भी बहुत सारे फ्री फ्लोटिंग सैयारे जो हैं वो मौजूद होंगे जो हमें डिटेक्ट तो नहीं होते क्योंकि अब वो इतने गर्म नहीं, लेकिन इसका मतलब ये है कि सितारों के दरमियान में जो जगह हैं जिसको इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं, उसमें गालिबन काफ़ी सारे सैयारे मौजूद होंगे। तो जब उम्मीद है कि एक वक्त पर इंसान जो हैं वो एक सितारे से दूसरे सितारे की तरफ भी जाएगा, अगर हमारे यहाँ से ज़मीन से हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी की तरफ जाते हैं तो वैसे तो वो सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन क्या पता कि उसके बीच में कुछ सैयारे भी मौजूद हों जिसको हम एक लिहाज से स्टॉप ओवर के तौर पर इस्तेमाल कर सकें और इस तरीके से हम मुख्तलिफ सितारों की तरफ हम जाना शुरू कर दें।